मेरे आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। आज 19 अप्रैल 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं गजेंद्र प्रताप सिंह, आप हलियापुर डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और नितिन मिश्रा, आप दिल्ली से हैं। तो गजेंद्र और नितिन, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा अपने 8वें बैच के स्टूडेंट से। मैंने आप सबसे अपील की थी कि आप सब यदि अपने अंदर किसी तरह के बदलाव की अनुभूति कर रहे हो तो आप ईमेल के जरिए मुझे सूचित करें। तो इस बात के लिए मैं अपने 8वें बैच के स्टूडेंट की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उनमें से बहुतों ने ईमेल के जरिए मुझे सूचित करने की, यूं कह लूं कि तकलीफ की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब वे अपना मेल लिख रहे हैं तो उस मेल में सपाट बयानी नहीं है, और इस केवल मेल के स्ट्रक्चर को देख करके सच पूछे तो मैं आप लोगों में होने वाले परिवर्तनों का थोड़ा सा अनुमान तो लगा ही सकता हूं। यानी कि क्या परिवर्तन हुए हैं आप लोगों ने यह भी लिखने की कोशिश की है, और सच पूछे तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और सिविल सर्विस के लिए भी यही सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी आप उत्तर लिखें तो आपके उत्तर न केवल तर्कपूर्ण ही हो बल्कि तथ्यपूर्ण भी हो, यानी कि तथ्य हो और तथ्यों का इस्तेमाल करते हुए फिर आप तर्क निकालें और फिर उस तर्क के आधार पर अपने कंक्लूजन तक पहुंचें, तो आप सबके ईमेल में मुझे उसकी झलक दिखाई दी। मित्रों, ये बहुत ही आत्मसंतोष की बात है, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा आत्मसंतोष की बात है। एक बात मैं अंतिम रूप से कहना चाहूंगा अपने 8वें बैच के स्टूडेंट से कि देखिए, अभी 3 सप्ताह हुए हैं, 3 सप्ताह से ज्यादा हो गए, समझ लीजिए 4वां सप्ताह पूरा होने वाला है। यदि आप इसको अभी छोड़ देंगे तो मान करके चलिए कि आपको जितना लाभ मिलना चाहिए था उतना लाभ नहीं मिल सकेगा, आपको पकड़ कर रखना है। देखिए, आपने जो कुछ भी यहां सीखा, समझा, आत्मसात किया, मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी चीजें आपके काम की थी, अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों के काम की थी, आपको जो उसमें महत्वपूर्ण लग रही है जो बातें, आप उन्हें नोट कर लीजिए और उन पर काम करना शुरू कीजिए, एक्शन में लाना शुरू कीजिए। आप पाएंगे कि धीरे 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 वो परिवर्तन आपके अंदर एक स्थायी घर बना लेंगे और वही आपके बदलाव का साकार रूप होगा, फिर वो दिखाई देने लगेगा। तो मित्रों, अब इस संबोधन के बाद मैं आपको थोड़े से मुख्य विषय के बारे में बता दूं। मैं मुख्य विषय के तहत आज आपसे थोड़े से ब्रिटेन के बारे में बात करूंगा, ब्रिटेन, है ना। आइए थोड़े से हम न्यूज एनालिसिस को देख लेते हैं। पहली खबर थी दोस्तों कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो स्वीडन के बाद ब्रिटेन पहुंच गए हैं। उन्होंने कल ब्रिटेन की जो महारानी है उनसे मुलाकात की। एक इम्पॉर्टेंट खबर उसमें यह है जो अखबारों में है कि ब्रिटेन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, उसका सदस्य बन गया है। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ दिनों पहले चर्चा की थी जब इसका यहां सम्मेलन हुआ था, और मैंने उसमें बताया था कि खासकर जो कर्क और मकर रेखा के बीच के जो राष्ट्र हैं वो इसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं। और कर्क और मकर रेखा के बीच के राष्ट्र इसलिए क्योंकि सूरज यहीं सर्वाधिक चमकता है। जो स्टूडेंट रहे हैं क्लास के हमारे, वो इस बात को शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो उसमें अब ब्रिटेन का नाम भी जुड़ गया है, तो प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। चोगम की बैठक में आज हमारे प्रधानमंत्री जी भाग लेंगे, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये उसका फुल फॉर्म है। कॉमनवेल्थ समूह क्या है इसके बारे में हम लोग दोस्तों बात कर चुके हैं, और ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स की मीटिंग है। याद रखिए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट हेड ऑफ द स्टेट, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर हम भारत के संदर्भ में हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो फिर वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। जब हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वे होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। 53 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल सदस्यों की जो संख्या है वो 53 है। दोस्तों, स्वीडन के साथ बातचीत खत्म हो गई है, नॉर्डिक सम्मेलन, भारत नॉर्डिक सम्मेलन जो हुआ था इसके ऊपर कुछ चीजें आनी शुरू होंगी, तब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉमनवेल्थ की प्रासंगिकता, क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ की भी चर्चा आपको ज्यादा सुनने को नहीं मिलती होगी, बस ये जब खेल होते हैं कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल देश, तब उनकी उसकी चर्चा होती है, अदरवाइज आपको कहीं सुनने को नहीं मिलता होगा। तो अब एक सवाल उठने लगा है कि इस कॉमनवेल्थ की फिर उपयोगिता क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसको री एनर्जाइज करना चाहिए, इसको पुनर्जीवित करना चाहिए, तो उसको लेकर के बातचीत कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि क्या निकल कर आता है, फिर इस पर अपन बात करेंगे। एक प्रोग्राम के बारे में आपने न्यूज में सुना कि भारत ने स्टडी इन इंडिया ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। बेसिकली इसका उद्देश्य कि विदेश से जो लोग भारत में आकर के पढ़ना चाह रहे हैं या उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, बताना, तो ये स्टडी इन इंडिया नाम से ही बहुत स्पष्ट है, लेकिन ठीक है, थोड़ी सी मैंने चर्चा कर दी। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है मित्रों, जो विधि आयोग ने अभी सरकार से सिफारिश की है कि जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसको भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाया जाए। ये भारत सरकार से विधि आयोग ने सिफारिश की है। अब देखिए कि भारत सरकार इसके बारे में क्या स्टेप लेती है, क्या निर्णय लेती है। देखिए, सूचना का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और स्पेशली मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। सूचना का अधिकार, देखिए, इससे हम सूचना प्राप्त करते हैं, लेकिन मूलतः यह एक प्रकार से किसी भी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने का सबसे बड़ा उपकरण है कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाए, क्योंकि सूचना के जरिए आप कुछ भी मांग सकते हैं, तो उन्हें अपने को पारदर्शी बनाना ये सूचना के अधिकार का सबसे बड़ा दायित्व है। जो बीसीसीआई जैसे संगठन है या जो एनजीओज हैं, देखिए वो क्या कहते हैं कि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते वो सूचना के अधिकार से के दायरे से बाहर है। केवल वही सूचना के अधिकार में आएंगे जो सरकारी तंत्र है या जिनको जिन्हें सरकार से अनुदान मिलता है, ये उनकी अपनी मांग है। लेकिन जो अभी विधि आयोग ने जो सिफारिश की है तो उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, वो इस तरह से प्राइवेट नहीं है, उसको सरकार की तरफ से बहुत सी रियायतें मिलती हैं, जैसे कि उसको एक तो एक देश के क्रिकेट का प्रतिनिधित्व कर रही है वो संस्था, क्रिकेट का, राष्ट्र के क्रिकेट का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो छोटी मोटी बात नहीं है। और दूसरा यह है कि उसे टैक्स में बहुत सी रियायतें दी जाती हैं, और साथ ही साथ इसके जो पदाधिकारी वगैरह होते हैं इनको बहुत सी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, एक बात उन्होंने कही। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से जो खेल संगठन हैं जिनको सरकारी अनुदान मिलता है वो बकायदे सूचना के अधिकार के दायरे में है, और बीसीसीआई भी एक खेल संगठन है तो इसे भी आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, ये उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है, लेकिन आप देखिए कि एक बहुत विचित्र सी चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि बीसीसीआई को सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई के दायरे में लाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम इस दायरे में नहीं आएंगे। जो हमारे राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल खुद ही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, वो आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है अभी भी भारत में सूचना के अधिकार को लेकर, लेकिन चलिए धीरे धीरे स्थितियां बदलेंगी, चीजों में परिवर्तन आएगा और सूचना का अधिकार और अधिक सशक्त होगा, हम ये मानकर चले। तो मित्रों, ये सूचना के अधिकार के बारे में थोड़ी सी अपडेट है, थोड़ा अपडेट है। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं जो ब्रिटेन को लेकर है। फ्रेंड्स, नो डाउट कि अभी चोगम पर बात होगी, जो कुछ भी होगा हम लोग अखबारों में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा एक सजेशन है आप सबसे कि जो ब्रिटेन का इतिहास है उसकी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आपके पास होनी चाहिए, बहुत ही संक्षिप्त जानकारी, आपके सिलेबस में नहीं है। संक्षिप्त जानकारी मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो 1600 के बाद आप देखिए कि ब्रिटेन भारत में आना शुरू कर देते हैं, 1765 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अधिकार कर, भारत पर तो नहीं कह लीजिए, बिहार बंगाल वाले एरिया में जब उनका उनके शासन की शुरुआत होती है तो ब्रिटेन के साथ सीधे इंटरेक्शन शुरू हो जाता है और फिर ब्रिटेन का अधिकार हो जाता है 1858 के बाद। तो आप जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा ब्रिटेन को भी समझें, क्योंकि ऐसी टर्मिनोलॉजी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आएगी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, अभी आप सुन रहे हैं बर्मिंघम पैलेस, फिर आप ये भी सुन रहे हैं कि वेस्टमिंस्टर हॉल, ये सब चीज क्या है। इसी तरह से आप पढ़ेंगे कि जो हमारे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, A.O. ह्यूम, वो स्कॉटिस्ट थे। अब स्कॉटिस्ट थे तो क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि वो स्कॉटलैंड के थे, वो वेल्स के थे। फिर आप ये भी पढ़ते हैं कि आयरलैंड, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी गए यहां से बाहर, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने आयरलैंड से मदद मांगी, जबकि आयरलैंड ऑलरेडी ब्रिटेन का भाग था। तो ये आयरलैंड क्या है? जब वो ऑलरेडी ब्रिटेन का भाग है तो आयरलैंड से क्यों हम मदद मांग रहे हैं, वो क्यों हमें सपोर्ट कर रहा है, आयरिश क्रांतिकारी हमारे लिए क्यों इतने उपयोगी हो गए हैं। तो इन सारी चीजों पर सही पकड़ तब बनती है जब हम थोड़ा सा ब्रिटेन के इतिहास को जान लें। तो एक सजेशन तो मित्रों मेरा यह है कि आपको ब्रिटेन के इतिहास को थोड़ा सा जानना चाहिए। देखिए, मैं संक्षिप्त में केवल आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस रूप में हमें ब्रिटेन आज दिखाई दे रहा है, उस रूप में ब्रिटेन पहले नहीं था। ब्रिटेन एक आइलैंड है, आप देखिए नक्शे में आइलैंड है, और बेसिकली इसके चार भाग हैं। एक तो अंग्रेज कहलाते हैं, जो लंदन वाला पार्ट है, आप देखिए लंदन वाला पार्ट आपको साउथ में बिल्कुल दिखाई देगा, साउथ ईस्ट में लंदन वाला पार्ट दिखाई देगा। उसी के फिर साउथ वेस्ट में आपको वेल्स दिखाई देगा, वेल्स आप मैप में देखिए। इसके बाद आप नॉर्थ में चले जाइए तो वहां आपको स्कॉटलैंड दिखाई देगा और आयरिश आइलैंड फिर आपको अलग से दिखाई देगा। इनफैक्ट ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, तो ये चार यूनाइट हुए हैं, ये चार यूनाइट हुए हैं। लंदन वाला भाग जो इंग्लैंड कहलाता है, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इनको मिला करके इंग्लैंड बना है। और इनको मिलाना उतना आसान नहीं था, बकायदे आंदोलन हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं, एक्ट पारित किए गए हैं, तब जाकर के आज का ब्रिटेन अस्तित्व में आया है। और आखिरी जो आयरलैंड को मिलाया गया था, वो मिलाया गया था मित्रों 1801 में, और 1707 में स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिलाया गया। तो चलिए, अब चूंकि इतिहास का विषय है, टुकड़े टुकड़े में समझाने से बात बनती नहीं है, तो फिलहाल मैं समय को देखते हुए यही सजेस्ट कर सकता हूं कि आप लोग थोड़ा सा वक्त निकालिए और इंग्लैंड के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, जान लीजिए, तो इससे आपको मॉडर्न यूरोप को भी समझने में आसानी होगी, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री कह लीजिए, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, और साथ ही साथ नो डाउट कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। आज आपको जो क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, रूपेश शर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, जयेंद्र सिंह भाटी जूनागढ़ गुजरात से, सनौल मुस्तफा नई दिल्ली से, शैलेंद्र कुमार शीतलपुर उत्तर प्रदेश से, खुशबू यादव रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, प्रदीप चौधरी, अन्नू गांधी, रूबी कुमारी, गुड्डू कुमार पांडे गिरडीह झारखंड से, मनोज कुमार सिन्हा और सोनाली सिंघल, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।